बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग पिछले दिनों इस बात पे विचार कर रहे थे कि अपने जीवन में हम कुछ अच्छा कर सकें, और वो अच्छा ये कि हम अपने जीवन को ही पूरा अच्छा बना सकें। असल में जब भी शरीर से, मन से या वाणी से हम कुछ अच्छा करते हैं, तब उससे हमारा पूरा जीवन ही अच्छा होता है। और वास्तव में पूरा जीवन हमारा अच्छा हो तो हम उस परमात्म दशा का भी अनुभव कर सकते हैं। उस परमात्म दशा को प्राप्त करने के लिए तो फिर जीवन में से जो बुराइयां हैं, जो कर्म हैं, वो सब हटाना पड़ेंगे। पर अभी हम वो प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बना के और हम अपने भीतर उस परमात्म तत्व की, विशुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति तो कर ही सकते हैं। और उस अनुभूति के चलते हम बुरे कर्मों की थोड़ी बहुत निर्जरा भी करेंगे और थोड़ा पुण्य संचय करेंगे। इस जीवन में हम पूर्ण कर्मों का नाश करके अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकें, ये फैसिलिटी तो हमारे पास नहीं है। पर ये नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने पिछले दिनों ऐसा विचार किया है कि नहीं, हम अपने जीवन को जितना होगा उतना परिष्कृत कर लेंगे। निरंतर परिष्कृत करेंगे तभी जाकर के पूर्णतः हम पवित्र हो पाएंगे। अब उस प्रक्रिया में हमने ये देखा कि पहले हमें अपनी दृष्टि निर्मल करना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि जिसकी निर्मल है वो मन वचन काय की क्रियाएं करता है, तो उनके द्वारा उसके कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है और बंध कम होता है। अकेले एक दृष्टि निर्मल होने से, देखो कोई बहुत प्रेम से भी कोई बात कहे लेकिन उसकी दृष्टि खराब हुई, अभिप्राय खराब हो गए, तो अपन क्या कहते कि भले ही मीठ हो बोल रहे हैं, मनो खोटा अभिप्राय है इनका, इनकी बात में नहीं आ जाए, ऐसा कह देते। कोई व्यक्ति बहुत भला कार्य करता जान पड़ रहा है लेकिन अगर उसका अभिप्राय खोटा हो तो वो भला कार्य भी उसका हमारे लिए हितकर नहीं हो पाता, ना स्वयं उसके जीवन के लिए हितकर हो पाता। इसी तरह से मन में जो है, और हम दूसरे के लिए खोटा विचार रखें तो उससे भी जो है हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होने से हमारे मन वचन काय सभी जो है वो हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। तो सबसे पहले हमने समझा था कि हम अपनी दृष्टि को निर्मल करना चाहिए। दृष्टि निर्मल होते ही हमारा ज्ञान निर्मल हो जाता है और हमारे अंदर अच्छे आचरण करने की ललक उत्पन्न हो जाती है। आचरण पूर्णतः अच्छा हो जाएगा दृष्टि निर्मल होने से, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर अभी दर्शन की पवित्रता तो है, दृष्टि की निर्मलता तो है, लेकिन उसके अभी राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ। और जितना जितना राग द्वेष का या कषाय का अभाव होता है उतना चारित्र में निर्मलता आती है, इसलिए उसे बुद्धिपूर्वक फिर और राग द्वेष का अभाव करने के लिए वैसी क्रिया भी अपनाना पड़ती है। तो हमने पिछले दिनों ये समझा था कि ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आए तभी हम राग द्वेष घटाने का श्रद्धान रखें, वही हमारी दृष्टि की निर्मलता है। हम राग द्वेष घटाने की का ही ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, तो वही हम प्राप्त करें। और राग द्वेष घटाने की क्रिया का नाम सम्यक चारित्र है, तो हम उसके लिए प्रयत्न करें। राग द्वेष किस माध्यम से होते हैं, तो हमने ये भी पिछले दिनों समझा था कि राग द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, पर उसमें बाह्य में निमित्त भी हमारे लिए उत्पन्न कराने में सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए हम उन निमित्तों से बचने की भी कोशिश करेंगे, पर वो निमित्त से बचने की कोशिश पर तो अपन बाद में विचार करेंगे, पर पहले अपने भीतर उठने वाली उन निमित्त के द्वारा उठने वाली जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो हमें राग द्वेष में डाल देती हैं, उन पर थोड़ा सा विचार कर लें कि वो जो हमारे अंदर इच्छाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, उनका मामला क्या है। वो उठ तो जाती हैं, हम थोड़ी बहुत पूर्ति कर पाते हैं, बाकी सब अधूरी रह जाती हैं, तो मन के भीतर एक संक्लेश होता है। और मजा ये है कि कामनाएं जितनी पूरी होती हैं तो वो सुख तो नहीं दे पाती हैं, बल्कि जितनी पूरी नहीं हो पाती वो दुख ज्यादा दे देती हैं। एक व्यक्ति के यहाँ पर उनका मित्र आया, वो दोनों जन बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति और उनका मित्र, और बड़ा उदास है। वो कह रहा है कि आज तो जो है नेट 5000 रुपए का लॉस हो गया। तो बाजू में उनका बेटा बैठा रहता है, वो बड़ा चकित होता है कि पापा कैसी झूठी बात बोल रहे हैं, आज जब घर में आए थे तो कह रहे थे कि 5000 रुपए का तो अपने को आज लाभ हुआ है, और इनसे कह रहे हैं कि 5000 का घाटा हुआ। तो उसने कह दिया कि अंकल पापा झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 5000 का लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ 5000 का, मैं तो दुकान पे ही था। तो उनके पिता ने जो कहा कि तू चुप रह, तू समझता नहीं है, मैं सोच के गया था दुकान पे कि 10000 का लाभ होगा, 5 ही का तो हुआ, 5 का घाटा हुआ कि नहीं। अब वो जो 5000 रुपए का फायदा हुआ वो नहीं दिख रहा, उसका सुख नहीं मिला, बल्कि वो जो 5 कम आ पाए, ऐसी तो अपने जीवन में है। जो अपन जैसा सोच लेते, जैसी कामना कर लेते, जैसी अपने भीतर धारणा बना लेते हैं, फिर उसके अनुरूप नहीं होता, और होता ही नहीं है ये तो पक्का है। पर हमारे भीतर वो जो कामनाओं की पूर्ति के अभाव में होने वाली अतृप्ति है, वो हमें और अंततः उसी राग द्वेष में डाल देती है। भले ही कोई कितना भी सम्यक अभिप्राय रखने वाला हो, भली उसकी दृष्टि है, लेकिन उसके भीतर भी जो है कामनाओं पर वो पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। हमें आज वो चीज सीख लेनी है, और जरूरी है जब भी हम किसी चीज पर विजय पाना चाहें तो पहले उसकी तासीर जानना पड़ेगी। जैसे कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य को जीतने जाता है तो पहले पता कर लेता है मोटा मोटा हिसाब के भैया अपन को कितनी है, तो इसी तरह ये भी अपन को जो है अब जीतना है तो अपना आत्मबल कितना बढ़ाना पड़ेगा, जरा देख लें कि कामनाओं का बल कितना है, कामनाओं की तासीर क्या है, उनका नेचर क्या है। तो कामनाओं के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, पहली चीज वे पूरी होती मालूम पड़ती हैं, पर वो पूरी होने का भ्रम है। ये आपको बहुत गौर से मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लीजिएगा, मुझे हमेशा ये लगा करता है कि मैं आपसे कोई बात कहता हूं तो आप उसको एकदम स्वीकार मत करिए। मैं कहता हूं उसको अपने अंदर कसौटी पैदा करिए, उस पर कस के देखिए कि हाँ सच्ची बात है, तो आपके अनुभव से अगर वो चीज आएगी तो आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, हमने कही है इसलिए आपको मान लेना है, वैसा नहीं। अपन लोगों के साथ यही हुआ है, अपन इतना सारा सुनते हैं, इतना सारा जान लेते हैं, किताब में से पढ़ लेते हैं, फिर भी अपने अनुभव से उसको टैली करके नहीं देखते हैं, इसलिए अपने जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ पाता। पिछले दिनों भी मैंने जो लोग साथ में सुना है वो जान रहे होंगे कि पिछले दिनों अपन ने 12 अनुप्रेक्षाओं को एक क्रम से और समझा था कि हम उसको कैसे अपने उन विचारों को अनुभव में कैसे उतारें। तो इसी तरह ये भी है कि कामनाओं की अपन तासीर समझ रहे हैं, तो आप खुद भी देखिएगा कि कामनाएं कभी पूरी नहीं होती मालूम पड़ती। कभी भी कोई व्यक्ति सुबह से और शाम तक अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहे और वो ये कह पाए कि मैं पूरी तरह तृप्त हूं, मैंने जो सोचा था मैंने सब पा लिया, ऐसा होता ही नहीं है। अब 2 मिनट नहीं होंगे और कोई नई चीज उत्पन्न हो जाएगी कि अरे वो तो सब हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो ही बाकी है। इस तरह अपन देखें तो कामनाओं की तासीर ही है कि वे कभी पूरी नहीं होती हैं। एक कामना पूरी होती मालूम पड़ती है, लेकिन वो दूसरी कामनाओं को उत्पन्न करके ही पूरी होती मालूम पड़ती है। ये अपन खुद देखेंगे, वो पूरी नहीं होती, वो अपने साथ दूसरी कामना को उत्पन्न करा देती है और एक भ्रम उत्पन्न करती है, प्राप्ति का भ्रम। जैसे कि स्वप्न में कोई व्यक्ति जो है, जैसे अपन पढ़ते ना स्वप्न में राजपद पायो मूरख, उठ रुदन मचाए। बस वही चीज है कि स्वप्न में ऐसा लगता है जैसे कि सब मिल गया। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में जो है बहुत बड़ा राजमहल देखा और उसमें बढ़िया उसके गद्दे तकिए पे सो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको राजमहल मिल गया, स्वप्न में राज मिल गया, पूरा का पूरा आप राजा हो गए। लेकिन जब जगे तो भाई टूटी खटिया आती और कोई अपनों घर आते नहीं, बिना क्या प्राप्ति क्या हुई? वो जैसे स्वप्न में जागृत होने के बाद कुछ प्राप्ति नहीं होती, इसी तरह कामनाओं की तासीर है, वे स्वप्नवत है, वे हमें कहीं और किसी और में सुख की भ्रांति पैदा करती है। नाउ एंड हियर नहीं, देयर एंड फ्यूचर, कभी और कहीं सुख मिलेगा, अभी और यहां, अभी और यहां तो दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न की तासीर है वैसी ही इनकी तासीर है, और ये कभी पूरी होती नहीं मालूम पड़ती। एक बहुत छोटी सी घटना आती, पता नहीं वो सच्ची है कि नहीं है, पर बड़ा संदेश देती है। एक व्यक्ति के पास में एक संख था, तो जिनने उसको वो संख दिया था साधु जी ने, तो उनसे कुछ कहा था कि नहा धो करके और इसको संख को सामने रख करके और उससे मांगना, तो जितना मांगोगे वो उतना दे देगा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो संख को वो रखते थे और मांगते थे, जो चाहिए वो मिल जाता था उस संख से। अब किसी को मालूम पड़ गया और दूसरे व्यक्ति को, तो वो पहुंचा एक और संख लेकर के, उसने कहा सुनो मेरे पास भी संख है ऐसा ही वाला जैसा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति वाला संख तुम्हारे पास है, लेकिन ये जरा कमजोर संख है, मेरा वाला ज्यादा सशक्त है, ये वाला तुम्हारा तो जितना मांगो उतना ही देता है, इसमें क्या मजा? अरे मजा तो उसमें है कि जितना मांगो उससे दूना दूना मिले। तो उसने कहा वाह आपके पास है क्या ऐसा संघ? बोले हाँ, हमें एक साधु जी ने दिया था। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे क्या काम का, विशेष हमारे काम का नहीं, हमको इतना ज्यादा चाहिए नहीं, बहुत दिन से हमारे पास है, दूना हम बहुत कर चुके, हम सोचते हैं कि बदल लो अपन। उसने कहा इसमें क्या घाटे का सौदा है ही, ये तो बिल्कुल मुनाफे का ही है, ले लो तो हमारा वाला ले लो। और वो लेके चला गया और इनने जो है वो दुगना देने वाले संख को दूसरे दिन नहा धो के सामने रखा और कहा कि 1,00,000 रुपए मिल जाए। उस संख में से आवाज आई, अरे 1,00,000 क्या, 2,00,000 ले, 2,00,000। लेकिन आया कुछ नहीं। उसने कहा कि मामला गड़बड़ है। उसने कहा देते क्यों नहीं 2,00,000? उसने कहा 2,00,000 क्या लेना, 4,00,000 ले ना, 4,00,000। बड़ा गड़बड़ हो गया, आए फिर भी नहीं 4,00,000। अब इस कहानी को बढ़ाते जाओ तो बढ़ती चली जाएगी, चाहे जितने लाख तक आपकी जितनी आकांक्षा उतने मांग लो, लेकिन उससे दूने का भ्रम पैदा करेगी। जितने हम चाहते हैं उससे दूने का कोई अगर हमें भ्रम पैदा करे तो वही तो हमारी कामनाएं हैं। हम अपने पुरुषार्थ से भी अधिक की आकांक्षा रखते हैं, यही कामना है, ये कामना की तासीर है। ये हमारे भीतर कभी भी जो प्राप्त होता है उसकी तृप्ति नहीं देती, बल्कि अप्राप्ति की संक्लेश और पीड़ा अधिक देती है और हम फिर एक बार उसी राग द्वेष की प्रक्रिया में फिर से गिर जाते हैं। इसलिए इसको हमें समझना चाहिए, हमारे भीतर जो कामनाएं उठती हैं उनके उनका स्वभाव ये है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमें कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हमें दूसरे घर में संतोष मालूम पड़ता। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में बहुत सारी विशेषताएं होंगी, हम उनमें विश्वास नहीं रखते, ना हम उन विशेषताओं को कभी कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के शहर की विशेषताएं सुन के मन में आता है कि वहां रहते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, बॉम्बे में होते तो ज्यादा फॉरवर्ड लाइफ होती या हम बेहतर होते, यहां तो ठीक ढंग से कोचिंग की भी प्रॉब्लम है और यहां तो ना पढ़ाई वढ़ाई का कोई वो है, देखो और बड़े बड़े सिटी में कितनी फैसिलिटीज हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता नहीं है, ये हमारा भ्रम है। हम बाह्य चीजों से कामनाएं अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, हम अपने भीतर असंतोष पहले जागृत कर लेते हैं। असंतोषी व्यक्ति को तो पूरे संसार में कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। अब ठीक है, हमने स्वभाव समझ लिया कामनाओं का, तो क्या करें, ये तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन हमें रियलाइज करना पड़ेगा। मैं इसलिए इस स्वभाव को बता रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं थी वैसे बताने की कि हमारी क्या स्थिति है, हम कैसे कामनाएं करते हैं, पर इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता पड़ गई या हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच हम कामनाओं को ऐसा ही मानते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो आइए फिर अपन उपाय करें उन कामनाओं को आसानी से कैसे जीता जाए। तो सबसे पहली चीज कि हम डिसाइड करें कि कामनाएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक श्रेष्ठ कामनाएं और एक बुरी कामनाएं। इच्छाएं हमारे भीतर अच्छे प्रकार की भी हैं, इच्छाएं हमारे भीतर बुरी भी हैं। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के संसार की चीजें मांग सकते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं कि दुख कहो कमक कहो वही लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम अधिक क्या मांगे, जिनगुण संपत्ति हो बंदे तदगुण लभते। हम ये कामना भी कर सकते हैं, ये कामना फिर कामना नहीं कहलाती, ये भावना हो जाती है, इसमें पवित्रता आ गई। तो कामनाओं को अगर हम इस तरह दिशा दे देवे, उनको हम भावनाओं में कन्वर्ट कर दे दें, कर देवे अच्छी भावनाओं में, तो हम आसानी से कामनाओं को जीत सकते हैं। बुरी कामनाओं को पोस्टपोन करें, अच्छी कामनाओं को एट द मूवमेंट कर लें। अपन कहते हैं ना सुबस्त शीघ्रम, वही चीज है कि जो हमारे भीतर श्रेष्ठ कामना आई है उसको हम तुरंत पूरा करने की कोशिश करें, जो हमारे भीतर बुरी भावना आई है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें। झूठ बोलने की इच्छा हो रही है कि झूठ बोल दें, अवसर बहुत अच्छा है, पर उसी समय डिसाइड कर लें कि शाम को ही बोला जा सकता झूठ, तो अभी तो सच बोल लूं। होता उल्टा है कि हम सोचते हैं झूठ अभी बोल लें, सच शाम को बोल लेंगे। गुस्सा करने का मन हो रहा है कि इस व्यक्ति पर तो गुस्सा ही आनी चाहिए, तो ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, फिर हो नहीं पाएगा। जो बुरी इच्छाएं हैं अगर उनको तुरंत ना किया जाए तो बाद में उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसी तरह अच्छी इच्छाओं को भी है, आज का काल चूंकि ऐसा चल रहा है अवसर्पणी काल, इसलिए अच्छी इच्छाएं आज जितनी अच्छी हैं वे शाम तक उतनी अच्छी नहीं रहेंगी और कल तक तो उतनी अच्छी रहेंगी नहीं। एक उदाहरण दूं मैं आपको, एक चर्च में बहुत अच्छा लेक्चर हुआ और वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, डोनेशन पर हुआ था, वॉज द डोनेशन एंड वॉज द इन्वेस्टमेंट, दोनों के बीच क्या अंतर है। जब हम कुछ देते हैं और कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो वो सब इन्वेस्टमेंट है, और जब हम सिर्फ देते हैं और हम कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं और सब कुछ पा जाते हैं वो कहलाता है डोनेशन, ऐसा समझा रहे थे। वो बड़ा कन्वेंस हो रहा था, उसने लिखा अपना संस्मरण शायद टॉलस्टॉय का है, उसने लिखा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कभी जीवन में डोनेशन दिए ही नहीं, मेरा मन होगा कि मैं डोनेशन दूंगा, अब जब वो झोली लेके आएंगे तो उसमें $100 तो डाल ही दूंगा, ऐसा मन में विचार आ गया वो वक्तव्य सुनते सुनते। और जैसे ही मेरे मन में आया कि मैं $100 डाल ही दूंगा झोली में, तब फिर जो है फिर वो प्रवचन जो हो रहा था, जो लेक्चर हो रहा था, उसकी तरफ ध्यान मेरा जाना कम हो गया। अब ये गुनाहभाग चलने लगा कि $100 डाल दूंगा, $100 तो बहुत होते हैं। अगले क्षण, एक क्षण पहले मन हुआ था कि $100 दे देंगे, और जैसे ये सोचा कि $100 दे लेंगे, भीतर से दूसरे मन ने फौरन कहा कि 100 तो बहुत होते हैं, अब वो जो प्रवचन है वो सुनाई नहीं पड़ रहा, अब अपने भीतर ही गुनाहभाग शुरू हो गया, 100 बहुत होते हैं तो 50 तो दे ही दूंगा। लेकिन जैसे ही 50 का विचार आया, अच्छा विचार है लेकिन अच्छा विचार भी कितने जल्दी खराब नष्ट होता है, फिर भी कहता कि 50 भी बहुत होते हैं और कितने सारे काम हैं, अगर वो जो 50 मैंने बचा लिए हैं 100 में से, उनके कितने सारे उपयोग हो जाएंगे, और इस 50 में सिर्फ 25 बचा लूं तो इसका भी बहुत सारा उपयोग हो जाए। और वो बेटे को बहुत दिन से वो कह रहा है गाड़ी वाड़ी के लिए, तो वो भी आ जाएगी इतने में, तो 25 और बचा लो। अब उसका मन हुआ कि 25 तो दे देंगे और ज्यादा कम मत करो, बहुत दम साधे बैठा रहा, वो 10 मिनट अभी प्रवचन चल रहा है उसने बिल्कुल नहीं सुना, दान पे प्रवचन हो रहा है वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, वो तो गुनाहभाग कर रहा है कि 25 तो दे दूंगा, और 25 से घटते घटते वो $1 पे आ गया, और उसने कहा कि मैं इसके पहले कि वे लोग मांगने आए मैं वहां से निकल करके बाहर चला गया। इतना अधिक परिवर्तन उसके मन में आया, और उसने लिखते लिखते कहा कि मुझे शर्म लग रही है क्योंकि मेरे मन में यहां तक विचार आया था कि देखता कौन है, $1 डालूंगा और $2 उठा लूंगा, ये तक विचार आया था, जैसे चवन्नी डालूंगा और अखन्नी उठा लू, कौन देखता वहां पर, झोली में हाथ डाले हैं और कह देंगे कि ₹1 का नोट डाला था इसलिए अठन्नी निकाली, अठन्नी डोनेट की, जबकि डाली चवन्नी थी वो निकाल दी अठन्नी। इतना निकृष्ट विचार, अच्छे विचारों को सर्वाइव करना बहुत कठिन है, बुरे विचारों को सर्वाइव करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे अपने संस्कार हैं। बुरी कामनाओं को पूरा करने की इतनी उत्सुकता होती हमारे भीतर एट द मूवमेंट, लेकिन अच्छी इच्छाओं को पूरी करने की हमारे अंदर बहुत तीव्र लालसा नहीं होती है। हम क्या करें, हम इतना ही कर सकते, कामनाएं तो हर व्यक्ति सुबह से शाम तक करता है, इच्छाएं तो उसके भीतर सुबह से शाम तक, साइकोलॉजी में तो कहते हैं कि एक बार दृष्टिपात करने पर बाहर की वस्तुओं पर 1000 इच्छाएं व्यक्ति के मन में इकट्ठी होती हैं, एक साथ आती हैं, व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में वो डेवलप होती है। कॉन्शियस में तो सिर्फ एक आकांक्षा को वो पूरी करता है, 999 आकांक्षाएं उसके सबकॉन्शियस में सप्रेस होकर के और अनकॉन्शियस में पहुंच जाती, वो फिर जाकर के संस्कार बन जाती हैं और अगली बार वो और तेजी से आती हैं और फिर व्यक्ति मजबूर हो जाता है उसको पूरा करने के। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर उठने वाली कामनाओं को गौर से देखें, उनमें से जरा छटनी कर लें कि कौन सी अच्छी हैं। बस इतना ही करना है, करना तो पूरी पूरी है, बुरी वाली भी पूरी कर लेंगे लेकिन पोस्टपोन करके, वो बाद में करेंगे, बस इतना ही करना। झूठ भी बोलना है, सच भी बोलना है, दिन भर में कोई ऐसा तो है नहीं कि यहां खड़ा हो जाए वो कहे कि मैंने तो सच बोलने का नियम ले लिया, मैं तो झूठ बोलूंगा ही नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो झूठ भी बोलेंगे लेकिन कब, थोड़ा खैर बाद में बोलेंगे, अभी जरा सच बोल लें। इतना भी कर लेंगे तो फिर वो झूठ की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, वो कमती हो जाएगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये कामनाओं को जीतने का पहला उपाय है कि अच्छी और बुरी कामनाओं को डिसाइड करें, उसमें से अच्छी कामनाओं को वक्त रहते पूरी कर लें, बुरी कामनाओं का कोई वक्त नहीं होता है इसलिए उनको पोस्टपोन कर दें। वे हमारे द्वारा कभी हमारी भूल से हो जाएंगी, हम उनको करने की चेष्टा क्यों करें? हम जब भी चेष्टा करें तो अच्छा करने की चेष्टा करें। बुरी कामनाएं हमसे कभी हो जाएं तो हम उनके लिए एक्सक्यूज करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद ऐसा हो गया, मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि उन इच्छाओं को मैं पूरा करूं। ये पहली चीज है। और फिर दूसरी, अपनी कामनाओं को विस्तार दें। अच्छी कामनाएं हैं उनको ही विस्तार दें, बुरी कामनाओं को विस्तार देने की बात नहीं कह रहा हूं, अच्छी कामनाओं को विस्तार दे दें। जो मेरे मन में अच्छा भाव उठा है वो सबके लिए उससे पूर्ति हो। जैसे कि मेरे मन में उठा कि मैं एक रसगुल्ला खाऊं, अब ये कामना है, कोई बुरी कामना नहीं है, पेट भरने के लिए खाने की चीज है, अवक्ष भी नहीं है, कोई अवक्ष चीज होती तो फिर भी ठीक था। ठीक है, रसगुल्ला तो मैं खाऊं तो क्या करूं, मैं पॉकेट में पैसे पड़े हैं, मार्केट में जाऊं और वहां लेकर के अकेले खा जाऊं, क्या देर लगनी मुझे? नहीं, लेकिन मैं अपनी इस काम, ऐसे में तो मेरे अंदर और भी कामनाएं उठेंगी कि मैं उनको भी पूरा करूं, फिर मैं किस किस को पूरा करते रहूंगा। ठहरो थोड़ा, इस कामना को पूरा तो करना है लेकिन स्टाइल चेंज कर दें, इसको विस्तार दे दें। विस्तार देने का अर्थ है कि सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगा, घर के सब सदस्य खाएं। जो अच्छी चीज और मैं करना चाहता हूं वो अन्य लोग भी, मेरे परिवारजन तो खाएं, मेरे मित्रजन भी खाएं, ऐसा विस्तार दे दें। तो फिर अब जब परिवारजन सब लोग खाएंगे तो उतनी मनी तो है नहीं कि बाजार से खरीद लाएं, तो फिर क्या करें? फिर अम्मा से कह दें जरा कि अम्मा रसगुल्ला खाने का मन है, तो कह दिया अम्मा से कि मम्मा रसगुल्ला खाने का मन, भगत जी जी के बेटे फिर जरा सामान वामन लो, खोआ वगैरह जो भी जिससे बनता है वो लाओ, हम बना देंगे, देखना मजा, अम्मा बनाएगी, दो तीन दिन तो लग जाएंगे, एकदम तो नहीं बनेगी, दो तीन दिन तक हमारी वो कामना पोस्टपोन हो गई। और इतने ही नहीं, जब वो पूर्ति होगी उसकी तो सिर्फ मेरी पूर्ति नहीं होगी, आसपास और जो लोग 10 लोग हैं उनकी पूर्ति होगी। मुझे अपनी कामना को पूरा तो करना है लेकिन उस अच्छी कामना से और भी लोगों को लाभ हो, मेरी अपनी कामना से सिर्फ मुझे ही लाभ हो नहीं, सफर कल्याण की कामना अगर है तब फिर देखिएगा कि वो अच्छी कामना भी अपने कल्याण के साथ साथ और पर के कल्याण में निमित्त बनेगी। और उतनी देर तक हमें उस कामना को पोस्टपोन करना पड़ेगा, तुरंत हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तब इस तरह से हम कामनाओं को, हमारी ग्रिप बन गई अब कामनाओं पर। ऐसा नहीं है कि कामनाओं ने जोर मारा और हमको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं, हम जब चाहेंगे तब पूरी करेंगे, हम उसके नियंता हैं, कामनाएं हमारी नियंता नहीं है, वो हम उसके नियंता बन गए। तो इस तरह हम ये भी चीज कर सकते हैं। और बात छोटी सी चीज और आपसे कहूं कामनाओं के बारे में, तीसरा और उपाय है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें संतोष धारण करना चाहिए। ये संतोष क्या चीज होती है? ये पॉजिटिव अप्रोच कहलाता है। मैं सुनाता हूं हमेशा ये उदाहरण, जिस व्यक्ति की दृष्टि बहुत पॉजिटिव हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, वो व्यक्ति इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से कर लेता है। आज अपन लोगों में डिस्ट्रक्शन का नेचर बहुत आ गया है और वो हमारे असंतोष का कारण है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे को कितनी भी तकलीफ पहुंचे इसका विचार नहीं करते, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। सुविधा है कि नहीं है, दूसरे को असुविधा तो नहीं हो रही है, इसका हम ध्यान नहीं रखते। और यही हमारा असंतोष है, या कि हमें ये चीज असंतोष में ले जाती। संतोषी व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखेगा कि उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में दूसरे की क्षति अगर होती है तो वो इच्छा मुझे पूरी नहीं करनी, इतना तो मुझे संतोष है। ये प्रक्रिया है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। अब देखिएगा, एक उदाहरण से समझ में आएगा। सुकरात के जीवन का उदाहरण है कि उनकी जीवन साथी बहुत गुस्सा किया करती थी। तो क्या हुआ, एक बार ये भजन पूजन में लगे थे, इनके मित्र मंडली बैठी थी भजन करने वाले, बहुत देर हो गई, 2:30 बज गए, और अचानक जो है हमने आवाज दी कि जरा चाय तो ले आना, और चाय ले आना इतना कह के ये फिर भजन में मशगूल हो गए। अब इनकी थी तो भावना बहुत अच्छी, अब उस भजन का इनके लिए क्या असर पड़ा, इनके अंदर कामनाएं कम हुई या नहीं हुई, देखना जरा। वो बाहर आई और उसने देखा कि ये भजन पूजन में लगे हैं और इतनी देर से चाय बनी रखी हुई है और ठंडी हो जाएगी, अभी तो गर्म गर्म है, ये जल्दी से मंगा लेते, अब भूल ही गए, नहीं मंगाई थोड़ी देर तक। तो गुस्से में बाहर आई और सारी की सारी चाय सिर पर से उड़े। अब बताइए आप क्या होगा इससे। हुआ ये कि एक साइड से वो पूरी चाय बह गई और जगह जगह फफोले आ गए, आधा चेहरा तो जल गया, सारे मित्र सत्ते में आ गए, भजन कीर्तन सब रुक गया, लेकिन सुकरात मुस्कुरा रहे हैं, कहते कि भजन तो शुरू रहने दो, बहुत बाल बाल बच गए, भजन कर रहे थे इसलिए पूरा चेहरा भी जल सकता था, आधा तो अभी सेफ है, आधा ही जला हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ। ये क्या चीज है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ये हमें अब हम जो प्राप्त करते हैं उसमें हमें संतोष अगर है तो ही हम और अधिक प्राप्त कर पाएंगे, और अगर हमें प्राप्ति के बाद भी असंतोष बना रहा तो वो असंतोष हमें उस प्राप्ति का सुख भी नहीं दे पाएगा, और आगे हम उस चीज को जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक संक्लेश में ही रहेंगे। कई लोग जो यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि ऐसे संतोषी हो गए, यही से तो कुर्ते पजामा में रह गए, हम देखो हूट बूट साइड सूट बूट पैंट में है कि नहीं, ये सब अप्रगतिवादी लोगों का है संतोष, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से विचार करें तो जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है वो उतना शांति और सुख में जी रहा है, लेकिन संतोष का अर्थ ये नहीं है कि जितना है जम सकई तम कीरई जम न सकई तहेव सद्दह मानो, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितना शक्य है वो मैंने प्राप्त कर लिया, जो मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए मैं वेल ट्राई अगेन एंड अगेन, मैं फिर से जो है ट्राई करूंगा और ठीक ढंग से करूंगा। इसमें कहां प्रगति रुकी है बताइएगा, मैं कम से कम जितना प्राप्त होता है उसका सुख तो ले लूं, लेकिन ये प्रगति के नाम पर जो है इतना दुख उठाते हैं, जो प्राप्त हो जाता है उसका सुख नहीं मिला, जो अप्राप्त है उसके दुख की पीड़ा इतनी अधिक है कि रहा ही नहीं जाता है। और आज देख रहे हैं अपन, मैं तो जब 95% और 96% मार्क्स पाने वाले बी पास करने वाले को भी सुसाइड करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनको अपनी कामनाओं की पूर्ति का भी अभी स्टाइल नहीं मालूम है, ये अपने भीतर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं लेकिन ये असंतोष में जीने वाले लोग कभी प्रगति नहीं कर सकते। 1000 किलोमीटर की स्पीड की गाड़ी बना लीजिएगा, लेकिन ध्यान तो रखिएगा कि प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे, किसके लिए ये सब, जो कुछ भी प्रगति है वो किसके लिए, जो कुछ भी कामनाएं हैं वो किसके लिए, हमें जो कामनाएं करने वाले हैं वो नष्ट हो जाए और कामनाएं बनी रहे, इतना असंतोष, ये तो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें थोड़ा गौर से विचार करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा संतोष भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, वो संतोष हमारे पॉजिटिव अप्रोच में है। हम जो प्राप्त है उसको देखें, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, किसी के पास वो नहीं है, मैं तो सेटिस्फाई हूं अपने लाइफ से, मेरे पास टैलेंट है ठीक है, मैं उसका प्रॉपर उपयोग करूंगा, मेरे पास दूसरे से थोड़ी कम बुद्धि है कोई बात नहीं बढ़ जाएगी, असंतोष की क्या बात है इसमें, कम है बस इतना ही ना, बढ़ने में देर क्या लगने वाली है, मैं अगर एक बार ठान लूं तो मैं अपनी बुद्धि को भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकता हूं, मेरी दृष्टि अगर कहीं कमजोर है तो मैं अपनी दृष्टि को ठीक कर सकता हूं, पर मेरे पास जो है वो मुझे कम से कम लगे तो कि है, नहीं तो कल दिन जो प्राप्त होगा वो भी लगेगा कि वो भी नहीं है। और मजा यही है कि जो जो प्राप्त होता जाता है, देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन द लाइफ, बर्नार्ड शॉ ने देखा कि 2 ही दुखांत घटनाएं जीवन में घटती हैं, एक तो तब जबकि जिस चीज की प्राप्ति की चेष्टा की थी और प्राप्त नहीं हुई, एक दुखद घटना उस समय घटती है जब जिस चीज की आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, और एक घटना उस समय घटती है कि जिस चीज की आकांक्षा थी वो पूरी हो गई, तब फिर दूसरे की आकांक्षा तेजी से शुरू हो जाती है। बोथ आर ट्रेजेडीज, दोनों ही दुखांत घटनाएं हैं कि संसार की चीजों को प्राप्त करने के बाद भी एक जो तृष्णा भीतर जागृत होती है वो भी दुख का कारण है, और जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उसकी नहीं प्राप्ति का प्राप्ति का संक्लेश अभाव की पीड़ा भी व्यक्ति को दुख ही देती है। तो बताइएगा फिर हम ऐसी स्थिति में और कोई रास्ता चुने तो अच्छा ही रास्ता चुने, पॉजिटिव हमारा अप्रोच हो और हम संतोष जो जो प्राप्त होता जाए उसका मजा लें, और जो प्राप्त नहीं है उसका संक्लेश क्यों करें, उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाएं तब मुझे वो चीज प्राप्त होगी। इस तरह अगर अपन देखें तो अपने राग द्वेष को इन कामनाओं को जीत करके जितेंद्री बनने का अर्थ ही है कि अपने मन में उठने वाली इच्छाओं और कामनाओं को जीतना, और मन में जिसने कामनाओं को जीत लिया वो इंद्रियों को बहुत आसानी से जीत सकता है, इंद्रियों और मन को जीतने वाला ही विजेता कहलाता है, लेकिन दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग मन और इंद्रिय को जीतने वाले पड़े हुए हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके महीनों महीनों अंडरग्राउंड रहते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो दृष्टि निर्मल होगी जब तक सम्यक दर्शन के साथ ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी तब तक इन प्रक्रियाओं का उतना बेनिफिट नहीं होगा, घाटे का सौदा हो जाएगा। कितनी मेहनत भी करी और दृष्टि तो वही खोटी थी कि और मिलेगा, इसलिए त्याग कर रहे हैं ताकि और अधिक गेन करें प्राप्त हो, नहीं इसलिए त्याग कर रहे हैं क्योंकि त्याग करने लायक है, जो मुझे प्राप्त करना वो मेरे पास है, ये एक्स्ट्रा था ये मैंने छोड़ दिया। ये अप्रोच अगर इस तरह की है तो ही हमें प्राप्ति होगी। मैं एक वर्णी जी का और उदाहरण सुनाऊं और बस अपनी बात पूरी करूं। मैं थका तो नहीं हूं, हारा भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि इतना पर्याप्त है ये सोच करके। नहीं तो लोग सुबह से कह रहे थे कि अरे आप थक जाएंगे, मैंने कहा नहीं शरीर थक सकता है। स्वयं अपने जीवन में ये चीज एक बार तय कर ले तो कभी भी मोक्ष मार्ग पर चलते हुए थकने की कोई बात ही नहीं है और थकान होती भी नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और कहूँ वर्णी जी के जीवन की। क्या हुआ, एक बार बाई जी गई मंदिर और वो अपने गेहूं निकाल के रख गई और सोला की धोती रख गई कि भाई लौट के आए तो गेहूं पीस लें, और सोला की धोती पहन करके पीसती थी, वो शुद्ध भोजन करने की उनकी आदत थी। अब तो वो सारी आदतें आउट ऑफ डेट हो गई, वो तो सब बहुत बैकवर्ड लोगों की बातें हैं, फिर भी उदाहरण तो दे रहा हूँ, देना पड़ेगा, वो उदाहरण है ही ऐसा तो क्या करें। बहुत बैकवर्ड लोग ऐसे होते हैं ना, अपन तो बहुत फॉरवर्ड हो गए, कौन सोला वाला की धोली धोती सुखा है और रहता कहाँ सोला है, सब छू छू आ जाते हैं। खैर पर उस समय उस जमाने में इस तरह चलता था। तो क्या हुआ कि उसी समय जो है बाई जी कह गई थी कि देखो वर्णी जी गणेश प्रसाद अगर लकड़ी बेचने वाली आए तो लकड़ी डलवा लेना। उनने कहा डलवा लेंगे, तो उतने में लकड़ी बेचने वाली आ गई, उसने कहा कि लकड़ी डाल ली है तो कभी ठहराया तो है नहीं इनने जिंदगी में, उसने कहा चवन्नी की है, इनने कहा डाल दो, और जब चवन्नी देने लगे तो दृष्टि चली गई कि इसकी धोती तो बहुत फटी है, अब चवन्नी इसमें हमने दे भी दी है तो इतने में थोड़ी धोती आउट है, अपने भाई जी के पास तो बहुत धोती है, अपन एक दे भी दें तो क्या फर्क पड़े। अब ऐसा मन में उनके भाव है दे ले, अब उनने चवन्नी भी दे दी, वो जान लगी तो कह नहीं ठहरो भाई आपकी धोती बहुत फट गई है और आप हमारी बाई जी की धोती ले लो, बहुत है उनके पास, उठा करके उनने, और जब भूल गए कि जब सोला किया है भाई दे रही, जो हाथ में आई सामने रखी थी भाई दे रही उनने। अब देखना मजा, जिसके भीतर जितना संतोष है, जिसके भीतर अपनी कामनाओं श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति का विचार आ गया है कि मेरे भीतर यह कितना श्रेष्ठ विचार आया कि मुझे दे देना चाहिए, और उसी समय अगर लालसा घेर लेती तो मन को भीतर ही दबा के रह जाते उस इच्छा को। लेकिन अच्छी इच्छाओं को दबाना नहीं, अच्छी इच्छाओं को तो पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना। दे दी उन्होंने साड़ी और मन में और थोड़ी हिलोर आई, अरे थोड़ा इसको खाने पीने का भी कुछ दे दें, सो बिज्ञा हूं धरे थे आधा किलो दे दे। वो तो चली गई दोनों चीज लेकर के और खूब आशीष दे के चली गई, और जब बाई जी लौटी तो उनने देखी कि न धोती आए, उन्हें अब का पूछने का नहीं, इस प्रसाद से कछु नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है, बुलाओ उनको धीरे से, कहना भैया लकड़ियां ले नहीं, कहले हो बाई जी ले रही, और बड़े ने मानियो बा धोती और बा हमने वो दे दी, हमें बहुत गरीब लगी वो सो हमने दे दी, कहले कोई बात नहीं दे गई, मनो अब गणेश प्रसाद घंटा भर भूख भूख न चिल रही हो, शांति से बैठो। अब दूसरे कपड़ा सूखे और जब दूसरे गेहूं निकल है, जब बन है रोटी, अब इतना संतोष भी धारण करो। अपनी अगर इच्छाओं को तुमने पूरा किया, श्रेष्ठ इच्छाओं को, तो तुम्हें अब अपने दैनिक क्रियाओं में संतोष भी धारण करने पड़ेगा। देखिएगा, मेरे ख्याल से इस उदाहरण में सारी बातें छुपी हुई हैं। हम ऐसे अच्छे उदाहरण से भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी करें, मैं कहता हूँ एक प्रतिशत भी करें। ऐसा नहीं है कि हम इतने गए बीते तो नहीं है, इतनी बात सुन करके भी और हम अपनी उसी टेक पे चलें जो कि हमें हमारे अहित के लिए है। नहीं, अपनी टेक छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और जो कुछ अच्छा है वो तो अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए इसी भावना के साथ कि हम सबको सद्बुद्धि आए और हमारे अंदर निर्मल दृष्टि आए और हम अपने आचरण को धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त करें और एक दिन उस परम वितरागता को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। मिथ्या तम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, अपर भाष देखो, मानो जीव पानी है। मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते बहे अरहंता की महान। जो विद्यादि सागर सुधी त्यादि सागर सुधी गुरु है तैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान ऋषभ देव भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। युग के आदि में भगवान ऋषभ देव हुए और उनका निर्वाण हुआ। एक परंपरा चली धर्म के प्रवर्तन की। जैन धर्म में ये एक विशेषता है जो हमें जाननी चाहिए कि हम भगवान की हैसियत से पैदा नहीं होते, हम होते तो मनुष्य की हैसियत से पैदा हैं, लेकिन अपने आत्मस्वरूप को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो परम पद को पाने की योग्यता हमारे भीतर है। और यही हर एक तीर्थंकर के साथ बात जुड़ी हुई है, यह हमें समझनी चाहिए। तीर्थंकर और अवतार में फर्क है। अवतार वो माना जाता है जो पहले भगवान बन जावे और फिर बाद में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आवे, वो अवतार माना जाता, अवतरित होना। तीर्थंकर वो है जो तीर्थ की तरह है। तीर्थ के दो अर्थ किए अपने यहां पर। तीर्थ का पहला अर्थ होता है धर्म,
तीर्थं करोति इति तीर्थ करा, जो तीर्थ यानी धर्म को करे, प्रवर्तित करे, स्वयं अपने जीवन में उसे घटित होने दे और प्राणी मात्र के लिए भी जो धर्म को करे वो तीर्थंकर कहलाता है। और तीर्थ का एक अर्थ होता है घाट, जैसे बहुत गहरी नदी हो तो आसानी से पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर घाट बनाए गए तो उस घाट से अपन उस नदी को आसानी से पार कर सकते। इसी तरह तीर्थ यानी घाट, जो हमें आसानी से इस संसार की नदी से, इस संसार के सागर से पार उतारने के लिए सहयोगी बने, वो तीर्थंकर कहलाता है। ऐसे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, फिर उसके बाद तो एक पूरी परंपरा चली, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक आई। हमारे मूलभूत सिद्धांत कौन से भगवान ऋषभदेव ने हमें दिए, वो भी हमें जानना चाहिए। हमारे मूलभूत सिद्धांत में पहला सिद्धांत दिया भगवान ऋषभदेव ने। मैं सिद्धांतों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ऋषभदेव का नाम और उनकी पूरी कथा अपन जानना चाहें तो जान सकते हैं, और जानना भी चाहिए। कितनी सारी बातें अपन जानते हैं दुनिया भर की, मुझे कई बार लगा करता है कि आज शायद और सब बातें बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते कि देखो तुम्हारे अपने तीर्थंकर 24 हुए हैं और उनके ये नाम हैं, उनके माता पिता के ये नाम हैं, और इतना तो जानने चाहिए कि उनको कब वो गर्भ में आए, कब उनका जन्म हुआ, कब। जो लोग व्रत करते हैं उनको तो फिर भी मालूम रहता है कि गर्भ कल्याणक आ गया, जन्म कल्याणक आ गया, आज दीक्षा कल्याणक आ गया। कभी दीक्षा कल्याणक के दिन आपने अपने बेटे को पास बिठा के धीरे से कहा कि देखो एक तीर्थंकर हुए थे जिन्होंने आज दीक्षा ले ली थी, तुम्हारा क्या मन करता है? करता है मन तुम्हारा दीक्षा लेने का? हम तो नहीं ले पाए बेटे, तुम्हारा मन करे तो कभी विचार करना इस पे। ऐसा कहते हैं क्या कभी? हम नहीं कहते। इतनी अच्छी अच्छी सी बातें हमारे पास हैं, लेकिन हम कभी इन चीजों पर गौर ही नहीं करते, बस सुन लेते हैं। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। कब तक सुनते रहिएगा? कुछ करने के लिए भी तो होना चाहिए, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए तो हमें ये जानकारी भी देनी चाहिए बच्चों को कि कब उनका कौन सा कल्याणक हुआ। बैठ करके हो सकता है कि कोई 24 तीर्थंकर के नाम ना मालूम हो, और उनके चिन्ह तो बड़े बड़े लोगों को खड़े कर दिया जाए तो गड़बड़ा जाएंगे, वो अब भी बच्चे पास हो जाएंगे गो। पर ये जानकारी रखनी चाहिए, उनके मूलभूत सिद्धांत भी जानना चाहिए, और उन सिद्धांतों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमें उनको अपने जीवन में उतारने की भरकस कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। पहला सिद्धांत भगवान ऋषभदेव का, जो आज तक चला आ रहा है भगवान महावीर स्वामी और उनका जो युग चल रहा है, हमें कितनी बड़ी चीज विरासत में मिली हुई है, इस पे हमें कम से कम नाज होना चाहिए, इस पे हमें कम से कम गर्व और गौरव होना चाहिए इस बात का कि हमारे हाथ में कितनी बढ़िया चीज आई है और हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, इस बात का दुख भी होना चाहिए। जैसे किसी के हाथ में हीरा दे दिया जाए, मोती दे दिया जाए, चिंतामणि रतन दे दिया जाए और वो उससे कौवा उड़ाए तो उसको क्या कहोगे आप? नादान कहोगे, बुद्धू कहोगे। और ऐसे ही अपने हाथ में अच्छी बेशकीमती चीज आई हो और उसका अपन मिसयूज करें तो अपने को क्या कहेंगे? अपन बुद्धू कहेंगे। लेकिन इतना कह लेने से भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आज किसी को बुद्धू भी कह दो तो उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता, वो कहता ठीक जब हमारा मौका आएगा तो हम तुम्हें कह देंगे, हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, मैं आपको ये इशारा कर रहा हूं। हमारा बड़ा सिद्धांत मिला था वस्तु स्वातंत्र, नेचर ऑफ फ्रीडम। जैसे हम यहां जितने और जैसे हैं पैदा हुए हैं उस सब के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार हम खुद हैं। किसी ने हमें यहां ऐसा पैदा होने के लिए मजबूर नहीं किया है, ये हम अपनी वजह से यहां हैं। और जिस दिन हम चाहें यहां से पार होकर के मुक्त हो सकते हैं, ये वस्तु स्वतंत्र है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भगवान ऋषभदेव ने कहा था। हम स्वतंत्र हो सकते हैं संसार से। बंधन अगर हमने बंधन में है तो बंधन हमने स्वीकार किया है इसलिए बंधन में है। जैसे कोई कहे कि हम मुक्त कैसे होंगे, या कि कोई कहे कि हम मुट्ठी कैसे खोलें, तो सीधा सीधा सा है कि भैया बांधते काहे को, वो तो खुली हुई है। अब आप बांधने की कोशिश करते हो इसलिए हमें बताना पड़ता है कि ऐसे खोली जाती है। नहीं, असल में हम अगर अपने स्वभाव की तरफ ध्यान दे दें तो हम तो मुक्त स्वभाव को लिए हुए हैं, बस हमारी कमजोरियां हैं, हमारी कषाएं हमें कमजोर कर देती हैं और वे हमें संसार में फंसा देती हैं, हमें पाप में प्रवृत्त कर देती। हमारी कषाएं, हमारे क्रोध मान माया लोभ, इस बात की तरफ इशारा किया था कि कमजोर क्यों बन जाते हो, तुम्हारा स्वभाव कमजोर नहीं है, तुम अपने आप में स्वतंत्र हो और अनंत शक्ति को लेकर के आए हो। देखो मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं बताता हूं उसे प्रकट करके। और भगवान ऋषभदेव ने उस अनंत शक्ति को प्रकट करके बताया। ये उनके पहले सिद्धांत को हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इससे हम क्या सीखेंगे अपने जीवन में, इससे दो चीजें सीखने की हैं। पहली ये कि अगर कोई काम बन जाता है तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए हर्षित? क्योंकि हमने किया है, यही तो मुश्किल है। वो घटित होना था, हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं, हम कर्ता नहीं है। अगर हम वस्तु स्वातंत्र को समझते हैं तो कर्तित्व से मुक्त हो जाएंगे हम। और दूसरी चीज, हम गिला शिकवा नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ घटित हुआ है तो हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, दूसरे को दोष कैसे दे रहे हैं? यही तो वस्तु स्वातंत्र है। जो भी परिणवन हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ बड़ा मजा है, अगर अच्छा हो जाता है तो हम कहते हमने करा, और अगर बुरा हो गया इनने उनने ऐसी परिस्थितियां बन गई इसलिए ऐसा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है। अगर जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उस सब के लिए हमें अपने को जिम्मेदार मानना पड़ेगा, किसी दूसरे की जिम्मेदारी। हाँ, निमित्त तो बन सकता है, ऐसा मत सोचना कि निमित्त नहीं बन सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। निमित्त तो बनता है, लेकिन आखिर है तो हमारे ही द्वारा किया गया, ये हमें मानना पड़ेगा। तो पहला सिद्धांत हो गया, अच्छा सिद्धांत है, गिला शिकवा नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है अनेकांत। बहुत सारे धर्म वस्तु के भीतर होते हैं, उन सब को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही हर चीज के बारे में बहुत सारे सोच हो सकते हैं, हर व्यक्ति अपनी तरह से सोचने के लिए स्वतंत्र है, तो हमें हर एक के सोच का सम्मान करना चाहिए। ये वैचारिक सहिष्णुता आज बहुत कम हो गई। दूसरे की बात को इग्नोर करना तो आसान है, लेकिन दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर लेना, उसे स्वीकार कर लेना कि हाँ आप भी किसी अपेक्षा ठीक कह रहे हैं। अगर कोई अपने को कहे कि आप चोर हैं तो कैसा लगेगा? तो थोड़ी देर तो लगेगा कि मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, तो वर्तमान में तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन ये आखिर मुझे चोर क्यों कह रहा है? हो सकता है पिछले किसी जीवन में और कभी मैं चोर रहा हूं, तो क्या बुरी बात है, कह लिया ठीक, कह सकता है मैं रहा हूंगा, अनादिकाल से आ रहा हूं, हो सकता है कभी चोरी भी की हो मैंने, आज वर्तमान की अपेक्षा भले ही मैं साफ सुथरा हूं, लेकिन कभी तो हम उसकी बात पर गुस्सा नहीं हो पाएंगे फिर चोर कहने के बाद भी। ये वैचारिक सहिष्णुता भी आनी चाहिए, हमारे एक दूसरे के विचारों का हम सम्मान करें, एक दूसरे की बात पर हम थोड़ा सा गौर करें कि उसकी बात वो ऐसा क्यों कह रहा है, इस दृष्टि से किस दृष्टि से कह रहा है। इसी तरह वस्तु तत्व है, अगर हम अपने जीवन को देखें तो एक दृष्टि तो ये है कि मैं मनुष्य हूं, दूसरी दृष्टि ये है कि मेरे भीतर कोई परम सत्ता बैठी है, परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसा भी तो है, वो भी देखते रहना चाहिए, इसी पर्याय में नहीं फंसे रहना चाहिए दिन रात, इसी मनुष्य हूं मैं और ऐसा करना है मुझे, वैसा करना है, बस इसी में नहीं, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। इस बात की कभी सुबह से शाम तक कभी ख्याल आती है क्या अपन को? नहीं आती ना, अपन को आती है ना, अपन विरासत में अपने बच्चों को देके जाते हैं। शाम को कोई भी माँ अपने बेटे को बिठा के ये कहती कि तू शुद्ध बुद्ध एक निरंजन स्वभाव वाला है, कुंद कुंद की माँ कहती थी सुबह तू चली गई, कुंद कुंद भी चले गए, भाभी चली। ऐसी माँ क्यों नहीं है जो अपने बेटे को कहे कि तू शुद्ध बुद्ध निरंजन एक स्वभाव वाला है, पढ़ लिख लिया तूने, बहुत राजा बेटा बन गया, लेकिन तेरा स्वभाव तो ये है, तू जान इसको। ये थोड़ा सा हमें संदेश देना चाहिए, इसी संदेश देने के लिए तो ये पर्व आते हैं जो हमें संदेश देते हैं, और हम इन संदेशों को ट्रांसफर करें, अपने छोटे बच्चों को दें। आज बहुत जरूरत है संस्कारों की, अपन को तो संस्कार जितने मिले हैं वो मिले ही हैं कि आप यहाँ तक आते हैं समय निकाल करके, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो यहाँ आके अपना घंटे भर में देख रहा हूँ कि अगर दो का टाइम दिया है तो 10-15 लोग तो 2 बजे ही आ गए हैं, भले ही बाकी लोग 3 बजे आए हों, लेकिन आए हैं, अपना 2-2 घंटे क्यों दे रहे हैं? कुछ थोड़ा पुराना बना हुआ है कि भैया चलो 2 घंटा पाप से तो बचे, हम कहते कछु नहीं सुनो ने कछु समझ में आई, पाप तो नहीं करो, नहीं तो ते बाहर खड़े होते कोई पानी की दुकान पे, दुकान ही बैठे होते अपनी अच्छी दुकान पे, तो भी 2 बातें राग द्वेष की होती और कछु नहीं होता। और बस इतना ही तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, इतना लाभ भी छोटा लाभ नहीं है। तो दूसरी चीज वैचारिक सहिष्णुता, और तीसरी चाहे अहिंसा, अहिंसा पर एलक जी ने और काफी बात कही है, हमें राग द्वेष से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और राग द्वेष होता है वस्तुओं से, जितनी चीजों पर हमारी पजेशनेस रहेगी, जितनी चीजों को हम अपना मान के चलेंगे उतना राग द्वेष होगा और उतना ही हमारे द्वारा हिंसा होने, इसलिए चीजों को कम करिए, चीजों की आवश्यकता जितनी है उतनी रख लीजिएगा, जितनी आवश्यकता नहीं उनको हटा दीजिए, वही तो अपरिग्रह हो जाए। आप चीजों पे से स्वामित्व हटा लीजिएगा, चीजें पड़ी रह जाएंगी वहीं के वहीं, और चीजों में अब ये जो बोली वगैरह करते हैं लोग सोचते होंगे काय को करते हैं, ये पजेशनेस कम करने के लिए करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे भीतर कितना त्याग है, अहंकार को विसर्जित करने के लिए है, त्याग के लिए है, कि देखें हम इकट्ठा करते समय तो इकट्ठा कर लेते, छोड़ते समय भी हमारा हाथ खुला होना चाहिए, छोड़ा हमारा था ही कहां जो कि हम ग्रहण कर सकते थे, इसलिए तो हमने छोड़ दिया। इतनी समझ आनी चाहिए, ये 3 बातें दी गई थी प्रवचन, और ये सब संदेश बहुत दुर्लभ होते हैं, हमें इनकी दुर्लभता भी समझनी चाहिए। कभी आपको कभी बिटिया की भी शादी करी हो, आज की बिटिया की नहीं कह रहा हूं, अब तो शादी वादी मैंने देख ली, खूब गौर से देखता रहता हूं, सब शादी वादी नहीं होती, वो तो बस कुछ भी तो 2 घंटे के अंदर हिसाब किताब बराबर करके कि जाओ तो टरो, बहुत बोझ जैसा था ऐसे निपटा सा देते, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता भाई, हो सकता है आप अच्छे से करते हो, मैं गलत हो सकता हूं, मगर मुझे देख करके लगता है। पर पहले जो है अगर कोई पिता अपनी बिटिया की शादी करता था और विदा करता था तो 2-4 दिन तो ठीक से खाया नहीं जाता था, मुझे ऐसा मैंने देखा है, इतना स्नेह जो है। अब उसको मोह कह लीजिएगा, कह सकते हैं आप, देर क्या लगती कहने में, थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो मोह कहेंगे आप, लेकिन ये एक आत्मीयता थी। जब हम वहां पर एक अपनी बिटिया के स्नेह में 2-4 दिन ठीक से नहीं खा पाते हैं, रात उठ जाते हैं तो आंसू बहाते हैं, क्या कभी हमें अपने तीर्थंकर के अभाव पर ऐसे ही आंसू गिरे हैं क्या? आज कोई तीर्थंकर नहीं है, आज कोई समोशरण नहीं है, कहाँ है तीर्थंकर, कहाँ होंगे तीर्थंकर, कहाँ उनका होगा समोशरण, कहाँ उनकी दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी, इस बात की कोई तड़प ही नहीं। बस हम थोड़ा सा पिस्ताल लेते हैं पंचकल्याणक, उसी में देख लेते हैं और वापस घर लौट आते हैं। जो ओरिजिनल होता होगा वास्तव में देखते होंगे वे कितने सौभाग्यशाली होंगे। हमें भी वैसा सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती रोए थे, भगवान के निर्वाण पर रोए थे। भरत चक्रवर्ती शायक सम्यक दृष्टि थे भैया, आज वर्तमान में कोई शायक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। शायक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी थे, चक्रवर्ती तो थे ही। और जब भगवान ऋषभदेव को मोक्ष हो गया, उनका निर्वाण हो गया, तो फूट फूट के रोए। लोगों ने कहा कि आप इतने बुद्धिमान और आप रो रहे हैं। भगवान की ऋषभदेव आपके पिता थे, इस बात का आपको इतना मोह है? पिता थे इस बात का मोह तो उसी दिन छूट गया था जब उन्होंने घर छोड़ा था, लेकिन बात तो बहुत दूसरी ही है रोने की। रोने की बात सिर्फ इतनी है कि जो तीन संध्याओं में दिव्य ध्वनि घिरती थी, चार बातें धर्म की सुनते थे, भगवान के जाने के बाद अब कौन सुनाएगा, किससे सुनेंगे चार, इसके लिए रो रहे हैं। मोह की वजह से नहीं रो रहे हैं, मेरे संसार से पार करने के जो उपाय थे वे मेरे से दूर चले जा रहे हैं, इसके लिए रो रहे हैं। दुनिया की संपत्ति हमारी छिनती है, हमारी घर गृहस्थी में कोई चीज की कमी हो जाती तो रो पड़ते हैं हम, और हमारे धर्म के साधन कम हो जाते, हमारे धर्म के क्षण कम हो जाते तो नहीं रोते हम कि आज तो दिन भर निकल गए, एक बात धर्म की नहीं हो पाई, हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगा। ई खिला ने रोए कबू, कभी नहीं रोए इसके लिए। शाम को बैठ के कोई इस बात के लिए दुखी नहीं हुआ होगा कि आज दिन भर में थोड़ो ही सो धर्म कर पाए, थोड़ो और कर लेते, ये पर्याय ऐसे ही निकल जाए कि आज अवसर है भगवान के निर्वाण पर, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ उनके सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, जितनी धर्म की बात करो उतनी अच्छी है, पर जितनी अपने जीवन में आ जावे वो सबसे अच्छी है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने सबके जीवन में जो भगवान ने हमें दिया है संदेश, वो हम अपने जीवन में भी लागू करें और अपना कल्याण करें। बोलिए भगवान ऋषभदेव स्वामी की जय। आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज की जय।
नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दिनों अपन ने तीन बातें सीखी थी कि जब हमारे जीवन में धर्म प्रकट होता है या जो व्यक्ति धार्मिक होता है उस व्यक्ति के जीवन में सहज रूप से तीन बातें आ जाती हैं। सरलता आ जाती है, संवेदनशीलता आ जाती है और सजगता आ जाती है। अपने आत्म कल्याण के प्रति व्यक्ति सजग हो जाता है और सरल की जैसी वस्तु है वैसा उसे अनुभव में लेने की कोशिश करता है। और संवेदनशील तो होगा ही, जो व्यक्ति सजग होगा वो संवेदनशील भी होगा। ये तीन बातें अपन ने पिछले दिनों सीखी थी। आज इन्हीं तीन बातों में से थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। बीच में एक चीज और सीखी थी कि जो श्रावक है उसे संतोषी होना चाहिए और साधु हो तो वो समतावान होगा। संतोष और समता दो चीजें श्रावक और साधु के भीतर होती। पर तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते जब तक कि मुझे लगता है कि हम वस्तु तत्व को निष्पक्ष रूप से जब तक ग्रहण नहीं करते, वस्तु तत्व को जानने की हमारे भीतर प्यास नहीं होती, और जब तक हम ये नहीं समझते कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं, हमारा कल्याण हमारे द्वारा ही संभव है, तब तक हमारे जीवन में धार्मिकपना नहीं आता। आज वर्तमान में बहुत धार्मिक होना आसान हो गया है, ऐसे आसान हो गया है कि हमने मंदिर गए हैं, हमने स्वाध्याय करा है, पूजा करी है और बस हो गए हम धार्मिक। बड़ा आसान हो गया इस तरह धार्मिक होना। हम अपने जीवन में क्या करते हैं इसकी हम जरा भी चिंता नहीं करते, इसलिए बहुत आसानी है धार्मिक होने में। पर आज धार्मिक होकर के भी व्यक्ति शांत नहीं है, सुखी नहीं है, इसका अर्थ यही है कि उसने धार्मिकता का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ इतना कर लेने का नाम धर्म नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और जीवन में परिवर्तन भी कैसा आवे, तो श्रद्धा पूर्वक आवे, हमें अपने जीवन का ज्ञान हो, हमारे जीवन में आचरण हो। ये तो हम रोज सुनते हैं, नहीं लेकिन किस तरह से हो, प्यास पहली चीज है और वो आज खत्म हो गई। जिसको अपने आत्म कल्याण की चिंता होती है वो तो 24 घंटे इस बात के लिए तड़पता रहता है। सम्यक दृष्टि के लिए लिखा हुआ है कि जैसे किसी निरपराधी व्यक्ति को कोई अपराधी साबित करके और कोतवाल पकड़ के ले जाता है तो वो मन ही मन विचार करता है कि निरपराधी हूं, मेरे को कब अपराध से मुक्ति मिलेगी, मैं कब निरपराधी घोषित कर दिया जाऊंगा, आज तो लोग मुझे अपराधी घोषित कर रहे हैं, ऐसा विचार करता है। ठीक इसी तरह एक सदगृहस्थ भी गृहस्थी में तो विस्तार लेता है लेकिन 24 घंटे इस बात का विचार करता रहता कि कब इस चंगुल से फंसकर फंस तो गया हूं, कब इससे बाहर निकलूं और अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ूं। तब वो क्या करेगा? अगर ऐसा विचार करता होगा तो मैं मानता हूं कि हाँ वाकई में वो धार्मिक है। और जो ये विचार करता है कि मंदिर जाने तो सुमंदर हुआ है, स्वाध्याय में बैठने तो सुस्वाध्याय कर लो, पूजा करी, अब और हमसे क्या करवाओ जा। तो भाई अब ये तो हमने अपनी प्रक्रिया अपने आत्म कल्याण की शुरुआत के लिए की है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र हमें निमित्त बन गए लेकिन वे हमारा कल्याण कर देवे, ऐसा तो नहीं है। कल्याण तो हमें करना पड़ेगा और 24 घंटे के जीवन में करना पड़ेगा। ये बात अपन लोग नहीं समझ पा रहे, मुझे तो लगता है नहीं समझ पा रहे। हो सकता आप समझ रहे हो उस चीज को, पर जैसा हमारा जीवन होना चाहिए निश्चल और पवित्र हो।